نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يرشد كلهم اللهم صل وسلم. ایک بہت ہمارے معاشرے میں ایک عام چیز نظر آتی ہے اور اس میں بے دین لوگ کیا اچھے اچھے دیندار لوگ بھی اس مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں. وہ مرض کیا ہے کہ تھوڑا سا دباؤ اور پریشر ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہم مخلوق کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو تو فوراً جو ہے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں, تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کے اوپر حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے, بہت ہی پیارا ایک شعر کا خلاصہ تھا کچھ یا کچھ محاورہ کہہ لیں, کہ تھوڑی دیر یہ سوچ لیا کرو کہ کس سے رشتہ توڑ رہے ہو, کس سے رشتہ جوڑ رہے ہو, کس سے رشتہ توڑ رہے ہو, اپنے رب سے, پالنے والے سے, جس سے اس کی زندگی موت, ہماری صحت تندرستی, بیماری, خوشی غمی, ایک سانس کے بعد جو دوسری سانس آتی ہے تو وہ ساری اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں, تو اس سے ہم رشتہ توڑ رہے ہیں. اور کس سے رشتہ جوڑ رہے ہو, کس سے رشتہ جوڑ رہے ہو, نفس اور شیطان سے. مخلوق کو راضی کرنے چلے ہو اللہ کو ناراض کر کے, ان بیچاروں کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ نفس کے ہاتھ میں کچھ ہے, نہ شیطان کے ہاتھ میں کچھ ہے, نہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو اس وقت تک ڈگ ڈگی بجاتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, آپ کے آگے پیچھے پھریں گے جب تک آپ کی جیب میں دو پیسے ہیں, آپ کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے اور آپ اپنے ہاتھ پاؤں پہ چل رہے ہیں ماشاء اللہ سے اور سب کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, تو ایسا لگتا ہے انسان کو کہ کل کائنات میرے ساتھ ہے, لیکن یہ سب دھوکہ ہے. اللہ نہ کرے کبھی انسان اچانک گر جائے, کوئی بلا آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ کہتے ہیں پھر اپنا سایہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں, بہن بھائی تنگ آ جاتے ہیں, بیوی بچے تنگ آ جاتے ہیں, بستر پہ اللہ نہ کرے پیشاب پخانہ ہونے لگے, کوئی بیماری آ جائے, پھر وہی ماں باپ کہتے ہیں, اللہ ماں باپ کی بات بتا رہا ہوں, وہ تنگ آ جاتے ہیں, بولتے نہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ اس کی مٹی کو جلدی سمیٹ لے. اسی طرح ماں باپ بیچارے بہت زیادہ بوڑھے ہو جائیں, تو ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ وہ بیچارے بیٹے آئے اور امام صاحب سے کہہ رہے ہیں جمعے کی مسجد جمعے کی نماز میں جلدی آئے اور پرچہ دے دیا, حضرت اب امام صاحب ذرا والد صاحب کے لیے دعا کروا دیں, ایک زمانہ ہو گیا فالج گرے ہوئے بستر پہ پیشاب پخانہ ہو رہا ہے, ہم لوگ تنگ آ گئے. اب یہ کہ ہماری بھی مصروفیات میں کافی عرصہ ہو گیا, بس اللہ پاک بس عافیت والا عملہ فر دے. کیا مطلب, کھل کے نہیں بول رہے, نہیں بس اللہ اٹھا لے ان کو, ہم تھک گئے. تو یہ ہے دنیا کی حقیقت. تو دنیا کے نشے میں, دنیا کے چکروں میں زیادہ آدمی نہ آئے, کوئی کسی کا نہیں ہے اس دنیا میں, صرف ایک رب سے بنا کے رکھے. حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا شاہ ولی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے, اللہ سے بنا کے رکھنا سب سے بڑی عقل مندی اور اللہ سے بگاڑنا سب سے بڑی حماقت اور جہالت. کیا مطلب, اللہ سے بنا کے رکھنا سب سے بڑی عقل مندی. تو بھائی دنیا بھی ہم دیکھتے ہیں, کوئی کانسٹیبل کوئی دوست آپ کا بننا چاہے اور ایک آئی جی آپ کو آفر کرے کہ بھائی آپ مجھ سے دوستی کرو گے, لیکن کرنی ہے ایک سے دوستی ہے, دو سے نہیں. تو ہر آدمی عقل مند آدمی کہے گا یہ کانسٹیبل کیا بیچتا ہے, تو بیچارہ چھوٹے عہدے کا, آئی جی تو آئی جی ہوتا ہے. تو زیادہ پاور والے بندے سے بنا کے رکھوں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا. تو دنیا میں بھی ہمارے ایک مثال ہے, تو اسی طرح سے دنیا میں ہمارا معاملہ ہے, تو رب العالمین سے بڑا کون ہوگا, اس سے زیادہ طاقتور کون ہوگا, اس سے زیادہ تعلقات والا کون ہوگا. تو اللہ سے بنا کے رکھنا سب سے بڑی عقل مندی, یہ ہے مراد. اور اللہ دوسرا جملہ فرماتے تھے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ, بہت ہی پیارا جملہ ہے, اللہ اپنے یاروں کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ اپنے یاروں کو بے یارو مددگار چھوڑ نہیں سکتا, شرط یہ کہ ہماری یاری تو تھوڑی سی گاڑی ہو. شرط یہ اللہ سے ہماری یاری تھوڑی سی گاڑی تو ہو, لیکن ہماری گاڑی دوستی نہیں ہوتی, بالکل ہی بیکار تھرڈ کلاس کی بھی دوستی ہماری نہیں ہوتی. یہ تھوڑی ہے کہ مسجد میں آدمی بس خالی نماز ہی بنا ہوا ہے, مسجد سے باہر آئے لڑکیاں آ رہی ہیں دیکھنا شروع کر دیا, حاجی صاحب حج کر کے آئیں अभी एयरपोर्ट पे उतरे, औरतों से सीने लगा के चिपटा रहे हैं औरतों को, अपनी बेगानी पराई नामहरम सबको सीने से लगा रहे हैं हाजी साहब। ठीक है, हाजी है पाजी है भाई, तो हाजी साहब आप तो पाजी बनकर आ गए, आप ये क्या कर रहे हो? ये सीने तो आपने बाबे मुल्तसिम से लिपटाया था, रोज़े रसूल पे कितना रोए थे, 1 महीना 40 दिन आपने कितना तकलीफ़ उठाई, मुजाहदात किए, लाखों रुपए आपने हज पे लगा दिए, पाक साफ होकर आप आए हो और आते के साथ ही हराम काम करने शुरू कर दिए, तो ये हाजी नहीं है फिर, ये पाजी है। जिसको तकवे की तौफीक ना हो हज के बाद भी और आके वही हराम काम करने लगे, तो आदमी क्या कह, फिर क्या कहा जाएगा उसकी, जिसकी नीयत में ही ना हो कि मुझे तकवा अख्तियार करना है, छोड़ना है। हज का मकसद ये होता है कि पिछले गुनाह आदमी के अल्लाह ने माफ़ कर दिए, अब आइंदा उसमें तकवा से रहे, आइंदा उसमें तकवा से रहे। एक साहब ने बताया गवर्नमेंट जॉब में, उनके कोई अफसर हज पे जा रहे थे, हज का चूँकि सीज़न भी चल रहा है, तो उन्होंने जाने से पहले उनसे कहा ये ख़ास फाइलें ये मैं रख के जा रहा हूँ, इसको लॉक के अंदर रखना, तुम चाबी तुम्हारे पास है, ये धंधे की फाइलें, इसमें आके साइन करूँगा हज से जब वापस होंगे, तो बताइए पहले से सोचा हुआ हज पे जाने से पहले आके मैं साइन करूँगा इन फाइलों के ऊपर, तो मुझे रिश्वत के पैसे मिलेंगे लाखों रुपए। तो पता चला कि वो तो हज तो एक रस्मी तौर पे लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर रस्मी तौर पे करते हैं क्योंकि हज फ़र्ज़ हो गया है, पैसे भी हैं, चलो भाई कर कर आ जाओ, ठीक है फ़र्ज़ तो हज फ़र्ज़ जो है वो तो अदा हो गया फ़र्ज़, लेकिन उसकी रूह हासिल नहीं होगी। जिस इंसान की नीयत ही ना हो कि मुझे हज से आने के बाद गुनाहों को छोड़ना है, तो वो उसका हज नामकबूल होने का अंदेशा है। हाँ हज का जो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन उसकी रूह और उसकी हकीकत हासिल नहीं होगी। इसलिए हज़रत मौलाना शफी साहब रहमत इरशाद फरमाते थे, तकी उस्मानी साहब जाने का, तुम के वालिद साहब, के मकबूल हज की अलामत ये होती है, मकबूल हज यानी जिसका हज कबूल भी हो जाए, अलामत ये होती है कि जब वो हज करके आता है तो फिर उसके शबो रोज़ वो नहीं रहते, अगर दाढ़ी नहीं तो दाढ़ी रखेगा, अगर हराम काम करता तो हराम काम में कमी आ जाएगी, अगर पूरे ख़त्म भी नहीं होंगे तो नमाज़ें नहीं पढ़ता नमाज़ी हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर तगैयर माशाल्लाह से काफ़ी आएगा। अगर ये तगैयर आ गया तो समझ लो इसका हज मकबूल हो गया। अगर आने के बाद बाज़ लोग जो होते हैं जो हज से पहले थोड़े बहुत सही होते हैं, तो हज के बाद बेचारे वो और ज़्यादा उनके मामला ख़राब हो जाते हैं, या वैसे की वैसी बाज़ लोग रहते हैं जैसे हज से पहले थे, वैसी जो है वो हज के बाद भी वैसे ही रहते हैं, तो ये अलामतें अच्छी नहीं हैं। तगय्युर आना ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि इस बंदे के अंदर इखलास था और अल्लाह ने इसका हज कबूल कर लिया। अल्लाह जल्ला जल्ला। तो बात हो रही थी कि हम लोग कदम कदम पर टके टके पे छोटी छोटी बातें पे अल्लाह के अहकामात के परख छोड़ा देते हैं, अल्लाह के अहकामात को तोड़ देते हैं, अपने नफ्स की तरफ देखते हैं, नफ्स और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, मखलूक गुनाहों की तरफ हमें बुलाती है, हराम काम की तरफ बुलाती है, बीवी बच्चे गलत चीज़ के तकाजे करते हैं, तो हम चारों तरफ से हमारे रस्सियाँ पड़ी हुई होती हैं, कोई किधर से खींच रहा होता है, कोई किधर से खींच रहा होता है, हम कभी दाएँ हो जाते हैं कभी बाएँ हो जाते हैं, यानी सही गलत सबकी बातें हम लोग मानते रहते हैं। जैसे कटी पतंग नहीं होती, कटी पतंग होती है वो कटती है तो क्या होता है, उसकी चाल बता देती है कि ये पतंग है उसका अपना ताल्लुक जो है उसके अपने मालिक से नहीं रहा। हज़रत वाला रहमतुल्लाह अजीम मिसाल देते थे कि अगर कोई उड़ाने वाला नज़र नहीं भी आ रहा, लेकिन आप अगर पतंग को देखेंगे बहुत ऊँची पतंग, तो उसकी परवाज़ बता देगी कि इसकी डोर किसी के हाथ में, क्योंकि उसकी जो चाल और परवाज़ होगी पतंग की वो बिल्कुल फुत होगी, कभी वो दाएं होगी कभी बाएं होगी, सुकून से होगी, कोई उस तक पहुंच नहीं सकता, पता चल गया उसकी डोर पतंग की किसी के हाथ में। लेकिन जब पतंग कट जाती है और उसका ताल्लुक उड़ाने वाले से ख़त्म हो जाता है, तो फिर पतंग की चाल बता देगी देखने वालों को कि अब इस पतंग का उड़ाने वाले से ताल्लुक नहीं रहा। सुभान अल्लाह, अब कभी वो यूं दाएं बाएं लुढ़कियां मारेगी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी परवाज़ नीचे आना शुरू होगी, नीचे आते आते फिर बच्चे पीछे पड़ जाएंगे उसके, फिर उसको लूटेंगे, फिर उसको फाड़ देंगे, उसके परख चोड़ा देंगे, हाथ में किसी के नहीं आएगी। पता ये चला कि इसका ताल्लुक अपने मालिक से अब नहीं रहा। तो जब बंदे का ताल्लुक हराम कामों की वजह से, अल्लाह की नाराज़गी की वजह से, अल्लाह ख़त्म नहीं करते अपने ताल्लुक, हम जो है लानती काम करके बड़े बड़े गुनाह करके अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के ताल्लुकात को ताल्लुक माल्ला को बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फिर हमारी चाल हमारी गुफ्तार, फिर हमारा उठना बैठना चलना फिरना लोगों से मिलना मिलाना, फिर ज़रा सभी साहिब नज़र को ही होगा, ये बंद कोई अल्लाह वाले जो होते हैं साहिब नज़र भी होते हैं, तो 2 मिनट में देख के बता देंगे कि उसका ताल्लुक मालिक से नहीं है, इसकी डोर अपने मालिक के हाथ में नहीं रही है, अब इसका ताल्लुक अल्लाह से बहुत कमज़ोर हो चुका है। उसकी बातचीत बता देगी, उसके चेहरे की घबराहट बता देगी, उसकी वहशत बता देगी, उसकी डिप्रेशन बता देगा, उसके चेहरे की बदहवासी बता देगी अल्लाह वालों को। वो आलिमुल ग़ैब नहीं होते अल्लाह वाले हर वक्त, लेकिन अल्लाह पाक उनको नज़र अता फरमाते हैं। इसलिए हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अर्शाद फरमाते थे कि 2 आलिम मेरे सामने लेकर आओ, ایک اللہ والوں کی صحبت یافتہ اور ایک غیر صحبت یافتہ، اور مجھ سے پانچ منٹ بات کراؤ، میں پانچ منٹ میں بتا دوں گا ان میں کون صحبت یافتہ ہے اور کون غیر صحبت یافتہ ہے. فرمایا مجھے غیب کا علم نہیں ہے، لیکن کیا جو صحبت یافتہ ہوگا اس کی بات چیت، اتنا بیٹھنا، انداز تکلم بتا دے گا اس کا کوئی مربی ہے، اس کا کوئی شیخ ہے. کیا مطلب؟ اس کی بات چیت میں تمیز ہوگی، اخلاق ہوگا، ایک مینرز ہوں گے اس کے اندر. اور جس کی صحبت نہیں ہوگی اس کے مزاج میں ایک اکھڑ پن ہوگا، تھوڑا سا فرق ہوگا کیفیات میں، معاملات میں. اللہ تو آج جو ہمارے معاملات ہیں اللہ سے ٹوٹے ہوئے، آج ہم لوگ ڈپریشن میں چل رہے ہیں، پریشانیوں میں چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ اللہ کی جو تعلق معاللہ تھا، جو ہماری ڈوریں تھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ پاک نے ہم اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اس ڈور میں کمی آ گئی ہے، اس ڈور میں کمی آ گئی ہے. تو تعلق معاللہ کی ڈور میں کمی آ گئی، جس سے ہماری بدحواسی پریشانیاں جا نہیں رہیں. تو اب مثالیں کیا ہیں بھائی، جو ہم فوراً جو ہے وہ اللہ کے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں اور مخلوق کی بات مان لیتے ہیں. بہت ہی پیارا شعر علی بن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کا کہ سارا زمانہ خلاف و پرواہ نہ چاہیے، سارا زمانہ خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. کہ سارا زمانہ خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر کر تو یہ فیصلہ، پھر اس نظر سے جانچ کر کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے. پیش نظر تو مرضی جانا چاہیے کہ اللہ کی نظر کو دیکھیں، پیش نظر ہمیں یہ رکھنا چاہیے نظر کہ اللہ کس بات سے خوش ہو رہے ہیں، کس ناراض. لیکن آج ہمارا جو دائرہ فکر ہے وہ کچھ اور ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہماری ذلتیں، تباہیاں، بربادیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ دو تین مثالیں اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں نا باقی معاملات کے اوپر. اب ایک غیر شرعی تقریب آ گئی، کوئی مثال کے طور پہ کوئی بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یا کوئی دور پرے کا رشتہ دار ہے، مکس گیدرنگ ہے، بینکویٹ میں ادھر ادھر بلا لیے بھائی آپ کو آنا ہے. اب مکس گیدرنگ ہے، وہاں مووی تفسیریں بھی بنیں گی. اب کیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی مجلس جہاں کھل کے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مت جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ امام صاحب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی خلیفہ صاحب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی شیخ صاحب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہا ہے، یہ رسول اللہ امام الانبیاء عقد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور جن کے لیے کائنات بنی ہے، اور وہ جو فرماتے تھے وہی کے غیر کہتے تھے. نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ایسی جگہ مت جاؤ جہاں اللہ کی نافرمانیاں کھل کے ہو رہی ہیں. لیکن ہوا کیا کہ نہیں صاحب، انہوں نے رسول اللہ کے حکم کو سائڈ میں کیا اور وہ پہنچ گئے کہ جی برا مانیں گے میرے رشتے دار. اللہ برا مانے تو مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ہفتے جو نامہ اعمال پہنچ رہا ہے اس میں میری گندگیاں پہنچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو تو ہو، ٹھیک ہے نا، ہو تو ہو، لیکن فلاں میرا رشتے دار برا نہ مان جائے. یہ ہماری بربادی تباہی کی حقیقت، کہ ہم اللہ کے معاملے میں مخلوق کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، رسول اللہ کے حکم کے اوپر مخلوق کو اپنے دل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اللہ رسول کا حکم ٹوٹے تو ٹوٹے، میرا دل نہ ٹوٹے، میرے مخلوق کا دل نہ ٹوٹے، میرے رشتے داروں کا دل نہ ٹوٹے. بھائی رشتے داروں سے محبت کریں، ان کا خیال کریں. حقوق العباد ایک بہت بڑا اس دین اسلام میں اللہ نے کہ اہمیت رکھی ہے، لیکن حقوق العباد ادا کرنے کا مطلب لوگ غلط نکالتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ حقوق العباد کی بھی تو بہت اہمیت ہے، تو ہے اہمیت، کون انکار کر رہا ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حقوق العباد وہ پورے کیے جائیں جو حرام کام پر مشتمل نہ ہوں. بہن بیٹیوں کا وراثت کا پورا ادا کریں، شرعی تقریب ہے وہاں پہ اللہ گناہ کا حکم نہیں ہے تو جائیے، کون منع کر رہا ہے. تو بات یہ کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے حقوق العباد ادا کریں. اب بیٹی ضد کر رہی ہے، بیٹا ضد کر رہا ہے کہ ابا مجھے موبائل سیٹ لا کے دیں، ٹچ موبائل، اب انہوں نے لا کے دے دیا، یہ حقوق العباد تھوڑی ہے، یہ تو حقوق الوبال بنے گا، یہ تو عذاب اور اللہ کی پکڑ ہے یہ اسے باپ کے اوپر. حرام کام کر رہے ہو تم، بچے اور بچیوں کو تم نے ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تم نے گھر میں ایل سی ڈی لگا دیا، موبائل دے دیا، یہ حقوق العباد ادا ہو رہے ہیں. آج حرام کام کرنے کو بھی حقوق العباد کا نام دے دیا لوگوں نے، تو پوری ہم لوگوں کی سائیکو اس وقت الٹی ہو چکی ہے. تو بہت حالات اس وقت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ایک مثال تو یہ ہو گئی. دوسری مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور آج کل بنے ہوئے ہیں، اب بھائی 2% کی بچت اگر کسی کو نظر آ رہی ہے تو بچت نہیں ہے. دو چیزوں میں انہوں نے کچھ کنسیشن کیا ہوا ہوتا ہے، تو چار چیزوں میں انہوں نے ریٹ عام دکانوں سے زیادہ بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک سائیکو پوری چل رہی ہے، لوگوں کو اس کی تفصیل نہیں پتہ، اور اس پہ ٹیکسز وغیرہ بھی کافی لگتے ہیں. تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں کہ جی بچت کی وجہ سے، بچت تو درکنار ہوتا ہے کیا ہے کہ لانت کی بدعاؤں میں آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، अब्सलम की बद्दुआ है ना, लानो नाजिरा मंजूर अलई, अल्लाह लानत फरमा उस पर जो बदनफरी करे और अल्लाह उस पर भी लानत फरमा जो खुद को बदनफरी के लिए पेश करे, दोनों पे लानत। वो लड़कियां औरतें जो अपना चेहरा खोल खोल के आ रही हैं, दिखा रही हैं चेहरा, उन पे भी लानत, जो देख रहे हैं वो भी लानत। और वहां जो इस तरह की लड़कियां खड़ी कर दी टाइट पेंटों में पजामों में और उचकी हुई शर्टें, तो अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं बेदीन क्या दीनदार लोग भी उनको खूब देख रहे होते हैं चारों तरफ से, तो कितना ख़तरनाक लानती काम है। तो सिर्फ गैर शरी तकरीबात थोड़ी, हर ऐसी जगह जहाँ बेगैरती बेहयाई फवाशी और यानियत फैली हुई हो वहाँ आदमी नहीं जाना। हाँ मजबूरी की बात अलग है, जैसे मिसाल के तौर पर कहीं आदमी दफ्तर में जॉब कर रहा है, अब ये गैर इख्तियारी चीज़ है, अब नौकरी नहीं छोड़ सकते आप, लेकिन आप अपनी दुकान को बदल सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर को बदल सकते हैं, जो आपके इख्तियार में। लेकिन जहाँ मजबूरी के मामलाते हैं, जो गैर इख्तियारी चीज़ होती हैं, वो एक अलग मामला है, वो किसी अल्लाह वाले से पूछें तो वो बताएगा उसकी तफसील। लेकिन जिन चीज़ों में हमारा कोई नुकसान भी ऐसा नहीं है और हमारे इख्तियार में है, तो फिर जानबूझकर ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, उससे ईमान बर्बाद हो जाता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर, भाई डिपार्टमेंटल स्टोर में नाम भी मेंटल आ रहा है। मेरे दिल में एक बात आई, मेंटल पागल को कहते हैं ना, तो जो जाएगा वो पागल ही होगा, वो हसीनों को देखेगा पागल होगा, है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये मेंटल करने के लिए है, लोगों के ईमान को मेंटल करने के लिए ये डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेगा कि देखो और पागल हो, देखो और पागल हो, दिमाग ख़राब करो, नज़रों को गंदी करो, तो पागल ही होगा जो यहाँ जाएगा 2% बचाने के चक्कर में। हज़रत वाला हमारे प्यारे मुर्शिद आरिफ़ हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि तकवे से रहो, 2 पैसे ज़्यादा दे के महंगी चीज़ ख़रीद लो, यकीन जानो तकवे की बरकत से अल्लाह को राज़ी करने के चक्कर में तुम 10 रुपये की चीज़ अगर 12 रुपये की ख़रीदोगे तो तुम्हें अल्लाह इतना नवाजेगा तुम हैरान रह जाओगे। तुम आजमा के तो देखो, अल्लाह को आजमाना नहीं चाहिए, यकीन तो पैदा करो। तुमने अगर 2 रुपये ज़्यादा दे दिए कि मेरा तकवा ख़राब ना हो, मैं 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में ले लूँगा लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ मेरी नज़र ख़राब होगी, ये इख्तियारी अमल, तो करके तो देखो, अल्लाह पे अगर मिट के तो देखो, फिदा हो के तो देखो। हजरत फरमाते थे अल्लाह को एक फूल पेश करके तो देखो अपनी मोहब्बत का, अगर वो पूरा गुलिस्तान उलट दे तो बात करना, पूरा बाग उलट देगा, वो एक फूल तो पेश करके देखो हराम आरज़ुओं का। आज हम लोग टस से मसी नहीं होते, हिलते ही नहीं अपनी जगह से, बस रस्मी से मुसलमान बने हुए। अरे दिल को तोड़ो, जब तक आदमी दिल को नहीं तोड़ेगा, गुनाह से बचने का गम नहीं उठाएगा, उस वक्त तक बंद अबवाब नहीं खुलेंगे, बंद दरवाजे रूहानियत के, कुर्ब के, विलायत के, अल्लाह की नाम की मस्ती के, जलानी के, आफ़सलम के, मदीने पाक के, ये दरवाजे सब हर मोमिन के लिए खुले होते हैं। शर्त ये कि आदमी उसका एलिजिबल बने, अपनी अंदर एबिलिटी पैदा करे। हज़रत वाला के गालिबन छे थे, हाँ वो दरे मै खाना खुलता तो है आज भी, हाँ वो दरे मै खाना खुलता तो है आज भी, पैमान है मोहब्बत छलकता तो है आज भी, पैमान है मोहब्बत तो छलकता है आज भी, जो मफ्त हुआ मुर्शिद कामिल की नज़र से, जो मफ्त हुआ मुर्शिद कामिल की नज़र से, 100 बार गिर के भी संभलता है आज भी, 100 बार गिर के भी संभलता है आज भी, हाँ वो दरे मैखाना खुलता तो है आज भी। तो हज़रत मौलाना शबरी थानी साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कुतुब अब्दाल गौस कलंदर औताद अब्दाल जितने औलिया के दर्जात हैं, उन सब की बोतलें सील बंद बमोहर लगी हुई हैं, मौजूद हैं, मौजूद हैं। शर्त ये कोई पीने वाला चाहिए। क्या मतलब? उन्होंने खुदा की कसम उठा के कह रहे हैं, सारी कुर्सियां पुर हैं, जैसे ही किसी एक अल्लाह के वली का इंतकाल होता है, मिसाल के तौर पे कोई कुतुब का इंतकाल हो गया तो पीछे क्यों लगी हुई होती है, यानी एक लाइन लगी हुई होती है, जैसे ही सीनियर जूनियर होते हैं ना, इस तरह से जैसे हम बिल भरने जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि एक बंदा आगे खड़ा होता है काउंटर के ऊपर, हम उसके अगर उसके पीछे, तो जैसे ही अगला बंदा हटेगा काउंटर से तो फिर हम आ जाएंगे आगे। तो इसी तरह हर वली जो मौजूद होता है, मिसाल के तौर पर कुतुब है, अब डाले तो अब कुतुब के पीछे जो लोग उसके इंतकाल के बाद बनने वाले हैं कुतुब, वो तरतीब बार उनकी लाइनें लगी हुई हैं, जैसे ही उसका इंतकाल होगा फौरन जो सीनियर होगा जो उसके पीछे, वो उसकी जगह पे नॉमिनेट कर दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से, उसको पता चल जाएगा कि मुझे कुतुब का मुकाम दे दिया गया। इसी तरह गौश की क्यों लगी है, गौश की क्यों में कुतुब लोग लगे हुए होते हैं, गौश आखिरी मुकाम है, आखिरी दर्जा, तो जैसे ही गौश का इंतकाल होगा तो पीछे कोई कुतुब या कोई अब्दाल अगर कोई होगा तो फिर वो गौश को गौश बना दिया जाएगा। तो थानी साहब फरमा रहे हैं, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कमी अल्लाह के दरबार में नहीं है, कंजूसी अल्लाह के दरबार में नहीं है, हमारे अमाल की कमी खराबी है। फरमाया कि देर हमारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से नहीं। आज अगर आज हम लोग तकवे से रहें और गुनाहों को छोड़ दें तो खुदा की कसम अल्लाह पाक अपनी शराबेश के मोहब्बत से हमारे सीने को भर दे, शराबेश के में पिला दे, लेकिन हम बनते ही नहीं ऐसे, तो कैसे हमारे मामला दुरुस्त होंगे, कैसे अल्लाह का प्यार नसीब होगा अल्लाह। तो एक तो ये मिसाल हो गई, इसी तरह जो ये मामला होते हैं मिसाल के तौर पे आजकल लोग बहन बेटियों को या लड़कों को कोई एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाते हैं और इसको बिल्कुल कोई बात ही नहीं समझते, जैसे कोई ये बात ही नहीं है। तो आज एक और मिसाल ये दिल में आ रही है कि जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग सेंटरों में जो लोग आजकल पढ़ा रहे हैं ये अपने बच्चों को, उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है। लोगों को पता नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं, कू अनफुसिकुम अहलिकुम नारा, बड़ा गौर करने वाली बात है। अल्लाह पाक बाप को कह रहे हैं, बाप को कुरान पाक की आयत है, आयत ये सुन लीजिए कि बचाओ अपने आप को, इसको कह रहे हैं घर के बाप को, हेड ऑफ़ दी फैमिली, बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से, वह अहली को और अपने घर वालों को, घर वालों में अहलोयाल में बीवी बच्चे बचाओ जहन्नम की आग से, उस जहन्नम की आग से जिसके फरिश्ते बहुत जालिम और तनखू हैं, जालिम हैं वो, बहुत सख्त जान है, बड़े जालिम हैं वो, तुम पर ज़रा रहम नहीं करेंगे, वो वही करेंगे जो हमने उनको हुक्म दिया। यानी जब तुम पर अजाब मुसल्लत के नियम उनकी ड्यूटी लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो उनको तरफ नहीं आएगा कि इनकी बस पिटाई कम लगाओ, ये दुनिया में बड़े VIP थे, बड़े अच्छे थे, ये मखमली बिस्तरों पे सोते थे, इनका 1,000 गज का बंगला था, ज़रा इनको प्यार से इनको ट्रीट करो। नहीं, अल्लाह फरमा रहे हैं रहम नहीं करेंगे, वो मेरे हुक्म को देख रहे हैं, बस वो ये देखेंगे कि अल्लाह ने हमें मुसल्लत किया इसको अजाब देने के ऊपर। ये बाप की पिटाई लगेगी, बाप को कहा जा रहा है बचाओ अपने आप को, घर वालों को बाद में। क्यों? जब बाप सुधरेगा, बाप तखवे पर आएगा, तो बीवी बच्चे खुद ऑटोमेटिक लाइन पर आएंगे। मिसाल एक अक्सर मैं देता रहता हूँ कि कोई अगर फिल्म स्टार होगा, अदाकार होगा, कोई गुलकार अगर बाप होगा तो क्या होगा, उससे पूछा जाएगा। अक्सर इंटरव्यू आते रहते हैं, लोग बताते हैं टीवी में, इधर उधर अखबार आते हैं, जी आपके माशाल्लाह 2 बेटे हैं, आपने मुस्तकबिल में उनको क्या बनाने का इरादा किया? गुलकार होगा कहेगा गुलकार बनाऊँगा, क्रिकेटर बाप होगा तो क्या कहेगा, अपने बेटे को बेहतरीन बैट्समैन बनाऊँगा। तो जैसा बाप होगा वो वैसे ही अपनी औलाद को बनाता है, एक सीधी सी हकीकत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक टेक्नोलॉजी बता दी, तुम जहन्नम से अपने आप को बचाओ, मुत्तकी बनो, अल्लाह वाले बनो, तो इंशाल्लाह फिर तुम भी अपनी औलादों को अल्लाह वाला बनाओगे, तुम भी जहन्नम में जाने से बचोगे और अपनी औलाद बीवी बच्चे भी तुम्हारे जहन्नम में जाने से बच जाएंगे। तो इसलिए बाप को कहा जा रहा है। आज बाप अक्सर ये बात तकलीफ दे तो है, सब नहीं, माशाल्लाह बड़े अच्छे वालदैन भी है जो तकवे का ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सरियत बहुत तबाही की तरफ जा रही है और बर्बाद करने में जो अक्सरियत वालदैन की है, जो अपनी औलादों को बर्बाद कर रहे हैं कि हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी लेके डूबेंगे, हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी लेके डूबेंगे। औलादें तो आजकल माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर जो हैं वो तो बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, उनके दिल की कल्ब की ज़मीन बड़ी नरम है, उन बेचारों को जिस पट्टी पर लगा दोगे वो चल पड़ेंगे। ये तो माँ बाप के ऊपर है कि वो किस पट्टी के ऊपर अपनी औलादों को लगा रहे हैं, किस पट्टी के ऊपर लगा रहे हैं। तो बड़े ही मुबारक है और सलाम है ऐसे वालदैन को जो अपनी औलादों को दीनदार बना रहे हैं माशाल्लाह, बुरी सुबतों से बचा रहे हैं। लेकिन अक्सरियत का भाई इस वक्त बहुत बुरा हाल चल रहा है, तो लोग जो ये कोई एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बवाल है और अजाब है। छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जो है लोग इसकी परवाह नहीं करते, टच मोबाइल बच्चों को दे दिया, फिर कहते हैं जी वो कोरोना के दौर में चूँकि वो एक हालात ऐसे बन गए थे तो मजबूरन जितना भी स्कूलिंग सिस्टम था वो नेट के ऊपर आ गया था कोरोना की वजह से, घर बैठे तो उसके बाद से लानत चिपक गई, अब जान नहीं छूट रही, भाई तो आप दूसरे स्कूल में दाखिला करा दें। कहते नहीं वो ज़्यादा स्टैंडर्ड का नहीं है, अच्छा नहीं है, तो जितने भी अच्छे स्कूल है ना तो वहाँ सारा ये टच मोबाइल के ऊपर सारा मामला चल रहा है, क्वालिटी नहीं है। अब मसला समझ लें कि ये बंदा ये कहना चाह रहा है, मतलब ये निकलता है इसका कि मैं अजाब सह लूँगा, मैं गुनाह कबीरा का मुर्तकीब हो जाऊंगा, मुझे जहन्नम में जलना मंजूर है, मुझे दुनिया और आखिरत में अल्लाह के अजाब सहना मंजूर है, लेकिन मैं अपने बच्चों को तालीम में 20 से 19 करने पे उनको तैयार नहीं हूँ। यानी ज़रा सी कमी मैं बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं हूँ, चाहे मेरा अंजाम कुछ भी हो, मेरी औलादों का अंजाम कुछ भी हो, ये है बर्बादी की वजह। अब एक छोटी सी आपको इस पर एक मिसाल बताऊँ, इसमें भी जिल्लत छुपी हुई है। चलो तुमने अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया जहाँ टच मोबाइल ज़रूरी था, जहाँ सारे मामला उसी पर हो रहे हैं, तो भी बर्बादी है, हासिल फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक एक मिसाल ऐसी शानदार है बस कि वही समझाने को काफ़ी है। हमारे मुर्शिद हज़रत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि जब हज़रत के जो शेख थे हमारे दादा शेख हज़रत मौलाना अब्दुल गनी फुलपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो जब उनकी सोबत में रहते थे तो गाँव में वहाँ पर हज़रत का एक छोटा सा मदरसा भी था फुलपुरी साहब रहमतुल्लाह का, और ऐसा गुमनाम और छोटा सा मदरसा था, कोई उसको गांव से बाहर जानता भी नहीं था। लेकिन हजरत वहाँ पढ़ाते थे फुलपुरी साहब रहमतुल्लाह, तो हजरत ने वहाँ एडमिशन लेने का इरादा कर लिया कि हजरत की सोबत में भी रहूँगा और आलिम भी बन जाऊँगा। तो हजरत के दोस्तों ने और बड़े बड़े लोगों ने ख़ानदान के कहा कि तुम्हें क्या हो गया, ये तुम अपने शेख के मदरसे में दाखिला क्यों ले रहे हो, ये तो गुमनाम मदरसा है, गुमनाम मदरसा है, और उसको तो कोई गाँव से बाहर जानता भी नहीं है, तुम्हें वहाँ से सनद मिलेगी तो उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, तुम्हें तो अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कौन पूछेगा, अगर तुम्हें आलिम बनना है तो दारुल देवबंद जाओ, वहाँ लिखा होगा जब सनद मिलेगी फारिग तहसील जामे दारुल देवबंद इंडिया, पूरी दुनिया में उसकी मांग है, पूरी दुनिया में तुम्हारी शोहरत का डंका पिटेगा कि तुम वहाँ के फाजिल हो और तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा। फिर ये बेकार मदरसा है नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह से बाज़ लोगों ने कहा, नहीं अहमियत नहीं है। अब जवाब सुनिए, हज़रत वाला हमने इरशाद फरमाया मैं इल्म दीन हासिल कर रहा हूँ अल्लाह की रजा के लिए, रब्बुल इज़्ज़त के लिए, ना कि इज्जत के लिए, मैं रब्बुल इज़्ज़त के लिए हासिल कर रहा हूँ इल्म दीन, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, ना कि इज्जत हासिल करने के लिए। और फिर मैंने किसी की नहीं सुनी, हज़रत ने फरमाया मेरा एक मकसद ये था कि इस मदरसे में हज़रत के साथ अगर मैं पढ़ूँगा तो दो चीज़ें हासिल होंगी, एक तो सोबत शेख जो फ़र्ज़ ऐन है, तो हज़रत को छोड़ने पर मैं किसी तरह तैयार नहीं था, और अगर मैं अपने शेख से दूर रहता था, अगर तीन दिन भी मैं हज़रत से नहीं मिलता था तो मुझे बुखार चढ़ जाता था। हज़रत वाले की कैफियत थी अल्लाह के इश्क और मोहब्बत की, ऐसी शेख की मोहब्बत की दीवानगी तारी थी, कह रहे बुखार चढ़ जाता था मुझे, सही है ना। आज हम ज़्यादा आ जाएँ शेख के पास तो बुखार चढ़ जाए आज उल्टा हो गया मामला। तो बहरहाल तो क्या मामला हो, फिर हज़रत ने फरमाया कि मैंने फिर एक तीर से दो शिकार किए, मैंने कहा मुझे शेख की सोबत भी मिलेगी और आलिम भी बन जाऊँगा, बाकी इज्जत जिल्लत अल्लाह के अख्तियार में। फिर मैंने वहीं अपने शेख की मदरसे में पढ़ा, फिर हज़रत वाले रहमत ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे वो दिन दिखाया, वो मुकाम अता फरमाया बड़े बड़े दारुल उलूम देवबंद के फारिग तहसील बड़े बड़े आलिम मुफ्ती शेखुल हदीस इस ग़ुलाम के सखीर के कदमों में बैठे होते थे अल्लाह का सीखने के लिए। क्या हुआ कि बड़े बड़े यानी दारुल उलूम देवबंद के फारिग तहसील जो लोग बड़े बड़े मुफ्ती जो टॉप ऑफ द लिस्ट थे, जो फर्स्ट क्लास में पास हुए, और फिर शेखुल हदीस तक के जो आखिरी मुकाम होता है, वो हज़रत से बैत हुए और फिर अल्लाह की इश्क और मार्फत उनसे हासिल करी। तो क्या देखा, पूरे दुनिया हज़रत का नाम जानती है लेकिन किस मदरसे में पढ़ा था बताइए आप, गुमनाम मदरसा छोटा सा, ये कहलाता है इखलास। जब आदमी अल्लाह को अहमियत देता है अपनी ये शैतानी सोच को, ये शैतानी वसवसे से आते रहते ना, चूँकि अगर मगर लेकिन, हाँ वो तो आप सही कह रहे हैं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन यूँ बस आदमी फिर ऐसे वो कभी कामयाब हासिल नहीं होता। अरे भाई आदमी आग में कूद गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदमी कूद गए थे वो, और फिर जब वो कूद गए थे तो अल्लाह पाक ने उसी आग को ख़त्म नहीं किया, बुझाया नहीं, उसकी गर्मी को ख़त्म कर दिया, आग में डाल दिया, और उसके बाद देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, लोगों से कहा आओ तुम भी आ जाओ देखो ये मेरा रब। फिर एक एक करके लोग डरते डरते जो कुफार थे आते रहे, एक कदम रखा दो बंदा आया, तीन बंदा आया, इस तरह पूरा मजमा आ गया आपके अंदर। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहे हैं या नारूकूनी बरदम और सलाम अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम के हक में ठंडी हो जा, ये नहीं कहा बुझ जा, ठंडी हो जा, ख़त्म मत हो, जलती भी रहे, नज़र भी है आग लगी हुई है, लेकिन उसको ठंडा कर दिया, उसकी तासीर ख़त्म कर दी। तो क्या दिखा रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इन वाक़ियात में, कि मुझ पर नज़र रखो, मुझे राज़ी करो, मुझे खुश करो, जब मुझे खुश करोगे, मुझे राज़ी करोगे, मैं तुम्हारे सारी तुम्हारी बिगड़ी को बना दूंगा, फिर वो होगा जो तुम चाहोगे। एक हदीस पाक का खुलासा हम सुनते रहते हैं ना, अल्लाह ने क्या फरमाया, मनकूल है कि एक तेरी चाहत है, अल्लाह बंदों को कहते हैं अल्लाह पाक, ए मेरे बंदे एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, अगर तू उसको जो तेरी चाहत है मेरी चाहत के सुपुर्द कर देगा तो फिर मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और अगर तू अपनी चाहत के पीछे पड़ा और मेरी चाहत की मुखालफत करी तो थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और आखिर में होगा वही जो मेरी चाहत है। क्या मतलब कि अल्लाह के आगे सरेंडर हो जाए, वादा चलाक ना बने कि जी स्टैंडर्ड स्कूल का वो कम मैं करने पे तैयार नहीं हूँ, वो वहाँ की ज़्यादा अच्छा पढ़ा, या बच्चों वाली छोटी छोटी चीज़ें, भाई अल्लाह को राज़ी रखो, तुम्हारे बच्चे उसी कम स्टैंडर्ड के स्कूल में अल्लाह उनको वो शऊर वो अकल वो उनको मुकाम बुलंदी अता फरमाएगा जिसको हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और अल्लाह को नाराज़ करके अगर हाई स्टैंडर्ड स्कूल में भी पढ़ाया जहाँ की फ़ीसें लोग बड़े स्टैंडर्ड से भेजिए, उसकी जो बच्चों की फ़ीसें मेरे वो तो बैंक में थ्रू चालान जमा होती हैं, तो भाई अल्लाह को नाराज़ करके ऐसे ही वालदैन फिर ऐसी औलादों से पिट रहे होते हैं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, पिट रहे होते हैं ऐसे वालदैन अपनी औलादों से, क्योंकि उन्होंने एक दुनिया का कीड़ा बना दिया, उनकी तरबियत नहीं करी, उन्हें अल्लाह रसूल की पहचान नहीं कराई, और फिर रोते हैं, फिर आखिर में याद आता है अल्लाह जब बूढ़े होकर पिटते, कहते हैं क्या तुम नहीं जानते इस्लाम में वालदैन का कितना बड़ा ऊँचा मुकाम है, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो, अब याद आ रहा है अल्लाह रसूल, अब याद आ रहा है इस्लाम। उनको तो बेचारों को पूरा तुमने फरंगी बना दिया, दीन इस्लाम से तो तुमने हमेशा दूर रखा। कितने लोग बताते हैं कि माँ बाप मना करते हैं, अल्लाह वालों के मत जाओ शिद्दत पसंद बन जाओगे, रोकते हैं अक्सर वालदेन, दीन में पुख्ता कहीं ना हो जाए, ऐसे मुसलमानों का ईमान रहेगा? आज इस्लाम को खुद मुसलमान पसंद नहीं कर रहे, अक्सर कहते जी ज़्यादा शिद्दत, हर बात में शिद्दत पसंद, दाढ़ी रख ली शिद्दत पसंद हो गए, नज़रों की हिफाजत कर दी शिद्दत पसंद हो गए। कोई बेचारा अगर गैर शरई तकरीब में नहीं जा रहा, गुनाह से बचने की नहीं, अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा है, तो घरवाली उसको गंजा कर देते, इतनी बातें सुनाते। यार तुम कहाँ उठ बैठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसकी सोबतों में जा रहे हो? ऐसे थोड़ी चला जाता है, ज़माने के साथ भी चला जाता है। ये कोई तरीका थोड़ी है, शिद्दत पसंद हो गए तुम तो ये कौन कह रहा है? सब मुसलमान ही तो हैं, और इन बातों से गुनाह नहीं रहता, ये बातें गुनाह की नहीं है, ईमान ख़त्म हो जाता है, आदमी कुफर में चला जाता है, दोबारा कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। अगर दीन की मुखालफत अगर की, गुनाह करना अलग मामला, लेकिन दीनी शियार की, दीनी अहकाम की अगर मुखालफत करी, नाराज़गी का इजहार किया, उसने इस्लाम की अपनी गर्दन से इस्लाम का पट्टा उतार दिया, तो लोग इसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें अक्सर लोग जो हैं वो बेचारे मुब्तला नज़र आते हैं। तो सोचने की और फिक्र की बात है कि ये हमारे मामलात किस तरह से सुधरेंगे। तो ये तो चंद मिसालें बताई गई हैं, इसी तरह देखते चले जाएं सुबह से लेकर रात तक हमारे क्या मशागिल हैं, हमारे क्या मामलात हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम 90% हम अल्लाह के सुबह से लेकर रात को सोने तक हम अपनी नफसानी ख्वाहिश की तबाह करते हैं, अल्लाह रसूल की बातों को 10% भी मुश्किल से हम लोग नहीं पूरा करते। तो फिर उसके बाद जैसे हमारे अमाल फिर पहुंचते हैं आसमानों में अल्लाह के पास, फिर उस हिसाब से अल्लाह की तरफ से अहकाम नाजिल होते हैं। जब नाफरमानियाँ बढ़ती हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि फिर इनको IMF के काफरों के हवाले कर दो, मेरे इन मुसलमान बंदों को, फिर वो फैसले करेंगे इनकी किस्मत के। आज आप देखेंगे पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, हर 15 दिन में गैस और बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, टैक्सेस का निज़ाम बढ़ता जा रहा है, तबाही सख मच चुकी है, कारोबार तबाही की तरफ जा रहे हैं, या आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक शिकंजा टाइट कर रहे हैं, शायद मेरे बंदे इसलाह कर लें अपनी, शायद तखवे की तरफ आ जाएं। ये सारे मामलात इसलिए नहीं अल्लाह भेजते परेशानियाँ कि हमारे नवाफिल में कमी है, या हम तहज्जुद में नहीं उठ रहे, या चार तवाबैन हम लोग नहीं पढ़ रहे, या हमारे जिक्र अस्कार में कमी है, या दीन की शोबों में हम लोगों की शमूलियत कम है, सही है ना? तो इस वजह से नहीं होते अजाबाद। कुरान और हदीस का खुलासा इजमाए उम्मत है इस बात के ऊपर कि जब अल्लाह की नाफरमानी हद से बढ़ जाती हैं, गुनाह बढ़ जाते हैं, हराम काम बढ़ जाते हैं, तो फिर अल्लाह के अजाब मुख्तलिफ शक्लों में नमूदार होते हैं, ज़ाहिर होते हैं। तो आज हम लोग नमाज़ पढ़ लेंगे और थोड़ा बहुत कुछ दीन के काम कर लेंगे, लेकिन गुनाह छोड़ने पर हम लोग किसी तरह तैयार नहीं हैं। तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, जब तक गुनाह 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 नहीं हम लोग छोड़ेंगे, उस वक्त तक रहमत के फैसले नहीं होंगे। ये कुरान पाक में आ चुकी हैं बातें, या हदीसें मुबारका में आ चुकी हैं बातें। लाख आदमी हज़ारों दफ़ा तस्बीहात पढ़ता रहे, उसका काम नहीं बनेगा जब तक अमली तौर पे गुनाह नहीं छोड़ेगा। तो गुनाह छोड़ने पर हम लोग तैयार नहीं। अभी भी परेशानियाँ आती हैं तो अक्सर यही लोग फ़ोन पर कहते हैं, हजरत कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, परेशानी है कि मेरा वजीफ़ा कोई ऐसा बता दें परेशानी टल जाए, कुछ पढ़ने को बता दें। तो भाई ठीक है, पढ़ने से भी फ़ायदा होता है, अल्लाह के इस्माइल हुस्ना में और वज़ाइब जो हैं कुरान और हदीस में, उससे भी फ़ायदा होता है, लेकिन ये आधी तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि अक्सर जो परेशानियां बल्लियात जो मसाइब होते हैं वो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से उतरते हैं। तो कोई भी वजीफ़ा उस वक्त तक ज़्यादा मौसर नहीं होगा जब तक हम अमली तौर पर गुनाह को नहीं छोड़ेंगे। हज़ारों दफ़ा पढ़ने के बजाय गुनाह को हम छोड़ें, किसी आदतन गुनाह तलो, फिर उसके बाद एक तस्वीर भी अल्लाह के नाम की लेंगे तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। तो कैसे मसाइल हल होंगे? गुनाह छोड़ने का जो है वो हम लोग तहिया करें, अपने आप को तकवा अख्तियार करें, और तकवे के उसूल के लिए अल्लाह ने कुरान और हदीस में जो बातें बयान फरमाई हैं, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में खुलासा उसका यही बनता है कि सोबत अहलुल्लाह में आदमी जाए जहाँ उसको मुनासबत हो, फिर गुनाह छोड़ने नहीं पड़ते। अल्फाज के हैं, गुनाह छोड़ने नहीं पड़ते, फिर गुनाह खुद ब खुद छूट जाएंगे। एक है गुनाह छोड़ना, मज़ा आ रहा है, कशिश है, नामुमकिन है गुनाह छोड़ना बाज़ लोगों की, नहीं लेकिन जब सोबतों में आता है इंसान तो चंद दिन में गुनाह छोड़ने नहीं पड़ते, खुद ब खुद छूट गया। हैरान हो गए, ये हुआ क्या? गुनाहों में कशिश ख़त्म, लज्जत ख़त्म, घबराहट वहशत होगी गुनाह करने में, अल्लाह का इसका गलबा हो जाएगा, असलम की मोहब्बत का गलबा हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या उसके हालात हो गए, क्या हालत हो जाएगी उसकी कि भुला रहा हूँ फिर भी वो याद आ रहे हैं। یعنی اگر اللہ کو بلا کے حرام کام گناہ کرنا بھی چاہے گا تو اللہ کی طرف سے ایسا مجبور محبت کر دیا جائے گا، اس کے قلب کے اندر سے آواز آئے گی، ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ بلا رہا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، بلا رہا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ تو اللہ ایسا اپنا تعلق معلّہ نصیب کرتے ہیں صحبت کی برکت سے۔ حضرت مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ یاد آیا، ان کا ایک مرید تھا اور بہت خاص مقرب تھا، مخلص مرید تھا، لیکن بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیخ کے پاس آتے تو ہیں لیکن ان کی نیت میں اخلاص نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ پھر اللہ کا خاص فضل ان پہ نہیں ہوتا۔ شیخ کوئی غیب کا حال نہیں جانتا، لیکن اللہ تو سب کو جانتے، دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ تو اللہ کی طلب میں آنے والے بہت کم ہوتے ہیں، دنیاوی چکروں میں آنے والے بہت ہوتے ہیں، اس لیے محروم رہتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی مل ہی جاتا ہے، یہ ایسا بابرکت سلسلہ ہے۔ ایک بار ان کا مقرب کوئی مرید تھا، مخلص تھا، متقی پرہیزگار، لیکن وہی بات کہ نفس اور شیطان نے ایک بار حملہ کیا، کیونکہ صرف انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، جن سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ تو کوئی اس کی نامحرم کسی لڑکی سے اس کی کوئی ڈیٹ وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہو گیا، بھائی اس نے آدھی رات کو بلایا کہ تم آ جاؤ اور ملاقات ہوگی۔ اب اس کی ترتیب تھی، وہ حضرت مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ لے کے پیر ویر دبا کے تہجد میں وضو اور اس طرح سے وہ سلا دیا کرتے تھے ان کو، اور پھر تو بہرحال انہوں نے وہی ٹائم لیا ہوا تھا۔ تو رات میں انہوں نے اپنے شیخ کی خدمت کی، ان کے پیر ویر دبایا اور اس طرح سے جب دیکھا میرے شیخ اب سو گئے، اب یہ کم از کم دو تین گھنٹے بعد اٹھیں گے تہجد میں، تو وہ چپکے سے چلے گئے کیونکہ ٹائم دیا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی خانقاہ سے باہر قدم نکالا، اچانک بادل آنا شروع ہو گئے اور بہت تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حیران کہ نہ کوئی سیزن بارش کا، نہ بارش کے آثار، یہ ہوا کیا؟ اتنی تیز بارش کہ وہ جا ہی نہیں سکے، وہ سارا جو وقت تھا وہ ایسی انتظار میں ہی گزر گیا۔ بڑی کوفت ہوئی، بہت دل کو تکلیف ہوئی، گناہ سے اللہ نے بچایا نا، وہ تو نہیں بچ رہے تھے۔ ہوا کیا کہ جب دیکھا کہ بارش اب تھم گئی، لیکن وہ ٹائم تو گزر گیا جو ٹائم دیا تھا، اب فکر کہ شیخ اب اٹھنے والے ہوں گے، وہ مجھے دیکھیں گے، پھر میں نہیں ملوں گا تو ناراض ہوں گے۔ تو پھر وہ دوڑے جا کے دیکھا تو شیخ تھوڑا پہلے ہی اٹھے ہوئے تھے، اور ایک گہری سوچ میں وہ ڈر گئے کہ حضرت وقت سے پہلے کیسے اٹھ گیا۔ اب حضرت جو وہ بیٹھے ہوئے اور زمین کی طرف دیکھ رہے تھے بہت ہی غور و فکر کے ساتھ، وہ گئے تو ڈرتے ڈرتے سلام کیے، جی حضرت السلام علیکم، آپ اٹھ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اٹھ تو گیا، لیکن ایک بات بتاؤ بھائی، بڑے پیار سے انہوں نے کہا، اتنی بڑی بڑی خطرناک ارادے کیوں کرتے ہو کہ اللہ کو تکوینی نظام اپنا حرکت میں لانا پڑے؟ کیا مطلب کہ تم نے جو گندی نیت کری تھی اس کی وجہ سے اللہ نے اس گناہ سے بچانے کی نیت تمہیں بن بادل برسات برسا دی، پورا نظام ایسا بنا دیا کہ تم گناہ نہ کر سکو۔ کیا مطلب کہ اللہ والوں کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں، مخلص لوگ جو ہوتے ہیں، اگر وہ گناہ کرنا بھی چاہیں گے تو اللہ پاک ان کو اکثر بچاتے ہیں، حالات ایسے بنا دیں گے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے دیں گے، بچا لیں گے گناہ سے۔ معصوم نہیں ہوتے، اس لیے مشائخ کہتے ہیں معصوم نہیں ہوتے، محفوظ کر دیے جاتے ہیں، یہ کہلاتا ہے محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا اور کہا میری شخصیت ظاہر نہ کریں، بس حضرت کا میں اپنی اصلاح چاہ رہا ہوں، لوگوں کا اس واقعے کے ذریعے دوسروں کی اصلاح اور حضرت کا مقام لوگوں کو پتہ چلے۔ تو گلشن کا واقعہ، حضرت کے کوئی مرید ہوں گے بہرحال، تو انہوں نے نام نہیں بتایا، نہ ہمیں نام پتہ ہے اور نہ جانکاری کی ضرورت ہے، اصل تو اصلاح ہم سب کی، اللہ اصلاح فرما دے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسی کوئی معاملہ ہوا، وہیں قریب میں رہتے تھے، گھر میں کوئی تھا نہیں، کوئی ان کی لڑکی وغیرہ سے کوئی تعلقات تھے، کچھ تو بلا لیا آج گھر میں کوئی نہیں ہے تم آ جاؤ، وہ آ گئی۔ ابھی وہ آ کے بیٹھی ان کے پاس، ابھی بات چیت شروع ہی ہوئی تھی، اچانک ایسا لگا کہ جیسے کسی نے بیل پہ ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے ہٹائی نہیں۔ اب ظاہری بات ہے، اب کوئی بیل اس طرح سے بجائے کہ وہ تھوڑا سا نہ بجاؤ، غصے میں جیسے کوئی بیل بجاتا نا اس طرح سے۔ اب ایک جب انسان گناہ کرتا ہے تو ویسی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، دل میں ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، ڈر گئے۔ انہوں نے کہا یہ کون آ گیا اس وقت اور یہ اس طرح سے کون بیل بجا رہا ہے؟ تو کہا بھائی تم تو بھاگو، اتنا خوف ان پہ تاری۔ تو کہیں گے تو پیچھے چھپ جاؤ، تو کہیں پیچھے کہیں چھپایا۔ پھر انہوں نے جا کے اب جو فراق سے جو جھانکا تو دیکھا حضرت والا تشریف فرمائے کھڑے ہیں۔ اب تو بھائی ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کہ حضرت اس وقت بہرحال انہوں نے اس لڑکی کے ہاتھ جوڑے، کہا نکل میرے شیخ باہر کھڑے ہیں، اور وہ آ گئے۔ اس کو بہرحال پیچھے دروازے سے بھگا دیا۔ پھر آرام سے جا کے جیسے انہوں نے دروازہ کھیلا، دیکھا کوئی بھی نہیں، بالکل سناٹا۔ بڑے حیران کہ میں بالکل اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، بیل بجی ہے، لڑکی بھی گواہ ہے، اب حضرت ہیں ہی نہیں، ابھی تو دیکھ کر گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر جب دماغ اوسان ان کے بحال ہوئے تو پھر ان کو یاد آیا یار حضرت کو تو فالج گرا ہوا ہے، حضرت کو تو دو تین لوگ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے چلتے ہیں، یہ حضرت چلتے ہوئے کیسے میرے گھر پہ؟ پھر انہوں نے بائک اٹھائی اور انہوں نے کہا میں فوراً پہنچا خانقاہ، دیکھا حضرت آرام سے صبح بیٹھے اور بیان چل رہا ہے۔ तो मैं तो हिल गया, मैंने कहा ये क्या मामला था, बहरहाल हुआ क्या। फिर उन्होंने ये ख़त के ज़रिए फिर एक ख़त भेजा हज़रत को, हज़रत को तो उन्होंने बताया और कहा हज़रत ये मैंने नाम नहीं लिखा अपना, ये मजलिस के बाद पढ़ दें ताकि ये लोगों की इसलाह हो और आपका मुकाम लोगों को पता चले। फिर बहरहाल ये ख़त में फिर पढ़ाया गया भरी मजलिस में, तो इस तरह से पता चला। तो ये शेख की बाज़ दफ़ा करामतें होती हैं, अलग अलग मामला हैं, बाज़ दफ़ा शेख को नहीं पता होता लेकिन चूँकि मुखलिस थे, शेख से मोहब्बत बहुत करते थे, नफ्स और शैतान ने हमला किया तो अल्लाह पाक ने उस शेख की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने बचा लिया उनको, तो शेख का अक्स भेज दिया। वो किसी फरिश्ते की शक्ल में हो सकता है, किसी जिन की शक्ल में हो सकता है, किसी भी रिजालुल गैबी बहुत होते हैं अल्लाह के दरबार में, तो फिर अल्लाह पाक इसलाह की नहीं शेख को भेज दिया। तो बाज़ दफ़ा शेख को नहीं पता होता, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है शेख की करामत होती है कि अल्लाह पाक ज़ाहिर फरमा देते हैं, कश्फ करा देते हैं कि तुम्हारा मुरीद ये हरकत करने वाला है, तो उसके बाद जो होता है वो फिर एक शेख जो होता है अपना रूहानी तसरुफ़ से ऐसा कर देता है ताकि ये गुनाह से बच जाए, बाज आ जाए। या बाज़ दफ़ा शेख जो होता है कभी किसी पे कोई बला या मुसीबत आने वाली होती है तो ज़रूरी है शेख हर बात को डांट के या चिल्ला के बोले, नाराज़ हो के प्यार से भी कोई बात शेख कर दे तो उसको भी अहमियत देनी चाहिए। क्योंकि हज़रत मौलाना रूमी रहमत इरशाद फरमाते थे कि शेख की जो ज़ुबान है मुरीद की हक़ में गोया अल्लाह की तरफ से बोलती है, वो खुद नहीं बोलता, यानी अल्लाह पाक उससे बुलवाते हैं। तो शेख अगर कोई बात बोले तो उसको अहमियत देनी चाहिए। शेख ज़रूरी नहीं है, गैब नहीं बताता शेख, खोल के नहीं बोल देगा तुम्हारे साथ ये वाली बलाई हो, अगर उसने इशारे में एक इशारा दे दिया तो अकलमंदी का तकाजा ये कि समझ लो शेख ने वार्न कर दिया, अगर मैंने शेख की बात नहीं मानी तो आगे कोई फटी गई। तो अल्लाह ना करे अगर कोई शेख की बात को अहमियत ना दे और अपनी हरकतों पे जुता रहे और लगा रहे और शेख की बात को इग्नोर कर दे तो फिर शेख का काम ख़त्म, शेख का काम ख़त्म, अब अल्लाह जाने वो जाने। अल्लाह, तो जो अल्लाह के जो अल्लाह वालों के जो मुकर्रबीन होते हैं वो भी अगर बहकना चाहते हैं, बिगड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर अल्लाह का फजल होता है और इखलास अगर उनकी नीयत में शामिल हाल होता है तो अल्लाह पाक उनको ज़लील और रुस्वा नहीं होने देते, उनके साथ नहीं मामलात को तबाही की तरफ लेके जाने पड़ते, बहुत कम शायद कभी ऐसा हो कि वो बर्बाद हो जाए, वरना ऐसा होता नहीं। वही लोग बर्बाद हुए जो गैर मुखलिस थे, जिनके आने में इखलास नहीं था, शेख से दिली ताल्लुक़ कायम नहीं था, कोई और ताल्लुकात थे, दुनियावी चक्कर थे, परेशानियाँ दूर करवानी थी या कुछ, तो भाई ठीक है ये चीज़ें भी आदमी रखे, कोई मना नहीं करा, लेकिन शेख का असल काम है अल्लाह की नीयत से सही ताल्लुक़ रखो, उसकी बातों पर अमल करो। इस नीयत के साथ आदमी आए कि मुझे शेख बताएंगे मैं इंशाल्लाह जान लड़ा के अमल करूँगा। सहाबा कराम की शान, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं वफ़ाल समीना वताना, कि ये ऐसे प्यारे हैं सहाबा, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वह समीना सुना वताना फ़ौरन अतात कर ली। सहाबा ये नहीं कहते थे क्यों कैसे लेकिन अगर मगर चूँकि, ऐसा कुछ नहीं था, सुनते थे और फ़ौरन अतात, ये थी सहाबा की शान। आज हमारा क्या हाल है, 10-10 साल तक एक बात सुनते रहते हैं लेकिन इस काम से सुना उस काम छोड़ा दिया। समीना तो है, अव्वल तो समीना वाले भी लोग बहुत कम है, सुनने वाले आते ही नहीं, सुनने की नहीं, गुना छोड़ने पड़ेंगे। कुछ लोग सुनने वाले तो हैं, समीना वाले तो हैं, लेकिन क्या अताना वाले नहीं, अतात नहीं करते वो। तो काम कब बनेगा, जब सुनने के बाद अतात होगी, उस पर अमल भी होगा। तो सुने अमल की नीयत से आए कि जो भी मुझे अल्लाह रसूल की बातें पता चलेंगी इंशाअल्लाह ताला मैं जान लड़ा के अमल करने की कोशिश करूँगा। शेख से ताल्लुक़ अल्लाह के लिए रखे, शेख से मोहब्बत अल्लाह के लिए रखे, फिर देखे फ़िराक मज़े और दुनियावी मसले मसाइल उसके लिए भी आदमी है, लेकिन उनको रखे दर्जा फ़ानवी में। दुनिया के जितने मज़े हैं या दुनिया के जितने गम मुसीबतें परेशानियाँ हैं, मौत के साथ ही सब ख़त्म, ख़त्म दी एंड, मरे ख़त्म। तो दुनिया की चीज़ें तो दुनिया में रह गई, लेकिन शेख के साथ अगर अल्लाह के लिए ताल्लुक़ रखा था फिर वो ताल्लुक़ मौत के साथ शुरू होगा। जान निकलते वक्त, नज़ा के वक्त, कब्र में, हशर में, मौत के वक्त, सब जगह वो इस ताल्लुक़ में अल्लाह काम देगा जो शेख के सुबत में रह के हासिल किया था। दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है, यहाँ के खुशियाँ भी आरजी, यहाँ के गम भी आरजी। अल्लाह, तो बस आज इस बयान का जो ख़ुलासा यही है कि भाई छोटी छोटी बातों पर अल्लाह के अहकाम की हम लोग धज्जियाँ ना उड़ाएँ, अल्लाह रसूल के अहकाम को हम अहमियत दें और मखलूक को भी हकूक लिबाद भी पूरे करें शरई हदूद में। लेकिन जहाँ अल्लाह की नाफरमानी का मामला हो या नफसानी ख्वाहिशात का मामला हो, बीवी बच्चों के हकूक का मामला हो, तो शरई हदूद में पूरे करें, लेकिन इन लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम लोग नाराज़ ना करें। जब आदमी के जिस्म से रूह निकलती है और वो मैयत जब घर के अंदर पड़ी होती है तो फिर, और गर्मी के जब दिन होते हैं तो यही अपने प्यारे बोलते हैं गर्मियों के दिन है मैयत बदबू छोड़ देगी, बदबू छोड़ देगी, पानी छोड़ देगी, बर्फ की सिल्ले लगाओ, पंखा लगाओ, फिर उसको सफेद कपड़े से मुंह बांध दिया जाता है, फिर नाक के सुराखों में रुइयां डाल दी जाती हैं, होता है ना। और फिर क्या होता है, जल्दी उठाओ, औलादें कहती हैं अब्बा को जल्दी उठाओ, बीवी प्यारी बीवी जिसके पीछे पत्नी कितने कितने हराम काम लोग करते हैं, रिश्वतें खाते हैं, सूद खाते हैं, पत्नी क्या क्या गुनाह के काम करते हैं, किसके लिए, बीवी बच्चों के लिए। फिर वही बीवी बच्चे कहते हैं जल्दी निकालो, और फिर उसको उठा के फेंक कर आ जाते हैं कब्र में। फिर उसके नाम की बिरयानी चल रही होती है साले सवाब की, सब मजे से बिरयानियाँ खा रहे होते हैं, फिर लोग कहते हैं यार बोटियाँ तो लेकर आओ, उसमें डिश में बोटियाँ ख़त्म हो गई हैं, कोई किसी को याद नहीं करता। वो जो 6x4 का जो गड़ा है ना, अगर उसको तस्वुर हम लोग करें, हम लोग जनाजों के साथ जाते हैं, खबरों को देखते हैं, लेकिन हम अभी तक हमारी ये सोच है कि ये वो मरा है, इसकी नमाज जनाजा मैंने पढ़ी, उसको मैंने कंधा दिया। अरे भाई जिस तरह आज हम इस तरह से सारे मामलात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम खुदा की कसम हमारे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। हमें भी 4 कंधों पर उठाया जाएगा, हमें भी गुस्ल मैयत दिया जाएगा, हमें भी कब्र के अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा, 4 सलेबे रख के सब चले जाएंगे, फिर आगे हमारे नाम की बिरयानी चल रही होगी, लेकिन उस वक्त हम बिरयानी खाने वाले नहीं होंगे। हम बड़े शौक से बिरयानी खाते हैं ना, फिर हमारे नाम की बिरयानी चल रही होगी। तो भाई दुनिया की हकीकत को समझें, वजह क्या है, ये नहीं कहा जा रहा दुनिया को छोड़ दे, भाई दुनिया को खूब आदमी ऐश करे, इंजॉय करे, खाए पिए, हंसे बोले, घूमे फिरे, खूब ऐश करे, लेकिन अपने रब को ना भूले। हजरत फरमाते थे आसमां में झूलो मगर खुदा को ना भूलो, आसमां में झूलो मगर खुदा को ना भूलो। अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ खरीदो, अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो पूरी दुनिया घूमो, कौन मना कर रहा है, लेकिन खुदा को ना भूलो। जब जहाज में बैठो एयर होस्टेस आ जाए, हजरत फरमाते थे फिजाई माफी आ जाए, नज़र नीची कर लो, उस नज़र नीची कर लो, बार बार उसको मत देखो, ये है खुदा को याद रखना कि आसमां में झूलो मगर खुदा को ना भूलो। हजरत ने जहाज में बैठ के हजरत पर एक शेर बारी दुआ, मैं जहाँ भी रहूँ जिस फिजा में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ जिस फिजा में रहूँ, मेरा तकवा हमेशा सलामत रहे। दुआ है ये कि अल्लाह पाक मैं इस वक्त ज़मीन पर नहीं हूँ, मैं ज़मीन और आसमान के बीच में हूँ, हज़ारों फीट बुलंदियों पर भी हूँ, लेकिन अल्लाह पाक यहाँ भी मेरा तकवा वैसे ही रहना चाहिए जैसा ज़मीन पर होता है। ये नहीं है कि ज़मीन पर तो तकवा बहुत था, अब यहाँ आसमानों में आ गए तो एयर होस्टेस देख ली, यस सर जी सर, ठंडा लाऊँ, मीठा लाऊँ, क्या लाऊँ, अब शुरू हो गए। बाज़ लोग बहाने बहाने से जो कूनिए निकाल के बैठते हैं, है ना। अब हमने कई दफ़ा जहाज में देखा कि अजीब अजीब लोग होते हैं ना, बार बार बहाने से वो बैल बजाते रहेंगे, ये लाओ वो लाओ। तो बहरहाल ये चीज़ें जो होती हैं, ये अल्लाह के खौफ डरना चाहिए, अल्लाह ना करे अभी एरोप्लेन क्रैश हो गया, क्या होगा, क्या होगा, फिर सारी एयर होस्टेस समेत सारे जहन्नम में खड़े होंगे। तो भाई डरना चाहिए अल्लाह से, पता नहीं किस वक्त कब मौत आ जाए, कब किस वक्त मौत आ जाए, पता नहीं ये जो मैं बदनजरी हराम काम जो भी मैं गंदा काम कर रहा हूँ, हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात चल रहा हूँ, पता थोड़ी है, कहाँ तक बयान करें बस। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको कामिल तक़वा नसीब फरमाए। अल्लाह आखिर में हज़रत वाला रहमत इरशाद फरमाते थे कि ये 5 अमल बयान कर दिए, पर वो हर बयान के बाद ये बहुत ज़रूरी हैं, और इसका ताल्लुक जो है फ़राइज़ और वाजिबात से, जो भी इंशाअल्लाह ताला 5 अमल करेगा मरेगा नहीं उस वक्त तक जब तक अल्लाह पाक उसको अपनी बड़ी कोई विलायत नहीं उसको अता नहीं जब तक फरमाएंगे। तो ये वलीउल्लाह बनाने वाले 5 अमाल हैं, तो इसका किताब से भी मिल जाता है। तो पहला जो अमल है ये कुरान पाक तजवीद से पढ़ने का अहतमाम करें, तो 1.5-2 महीने की मेहनत है, किसी भी कारी साहब से नूरानी कायदे से कुरान पाक पढ़ें और अपनी ये तजवीद को दुरुस्त कर लें, तो फिर उसके बाद कुरान पाक पढ़ने में मज़ा भी आएगा और वो सही हो जाएंगी जो हम गलतियाँ करते हैं। और दूसरा अमल है 1 मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, ठोरी के नीचे से, दाएँ से और बाएँ से, और मूँछें बिल्कुल बारीक रखें। बड़ी मूँछ रखने पर आप सुसन में हलाकत की बद्दुआ दिए उन लोगों को जो बड़ी मूँछें रखते हैं और दाढ़ियों को मुड़ाते हैं, तो मूँछें बारीक रखें और दाढ़ी 1 मुट्ठी तीनों तरफ से रखें। और वाजिब है, लोग समझते हैं सुन्नत है, रख ली तो सवाब है, नहीं रखी तो कोई मसला नहीं, सुन्नत के साथ वाजिब है और वाजिब फ़र्ज़ के दर्जे में होता है। और तीसरा अमल मा असल मिनल काबैन मिलजारे फिनार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में चला जाएगा। मर्दों की नहीं है ये मसला कि जब हम खड़े हों चल रहे हों, खड़े हों और जब चल रहे हों टखने खुले हुए रखना ज़रूरी है, खोल के रखना वाजिब है, ज़रूरी है, नहीं तो जहन्नम में जलने की वाजिब है। और ख़वातीन के लिए हुक्म है कि भाई वो टखनों को छुपा के रखें, जो उल्टा दौर चल रहा है कि जो ख़वातीन है वो पजामे वगैरह सिलवाती हैं, अब तो पजामे आते हैं, फिर उसमें से कट लगवा देती हैं और फिर कहती हैं कि ऊँचे पैंचे रखना, मुल्ला कट अल्फाज सुनते हैं, मुल्ला कट पैंचे रखना, जैसे टखने से ऊपर पैंचे। तो भाई मर्द टखने छुपाने में लगे हुए, औरतें टखने खोलने में लगी हुई, टखने की अब तो पिंडलियाँ ख़वातीन खोल के फिर रही होती हैं, फिर उस पिंडलियाँ भी टखनों से ऊपर होती हैं, फिर उसमें चाक भी लगवा देती हैं कि ऊपर तक देखो, क्या इन चीज़ों का मकसद है। तो डरना चाहिए इन चीज़ों से। तो बेपर्दगी तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ आज लफ्ज़ है ना, बेपर्दगी का बवाल। बेपर्दगी का मतलब तो ये होता है कि चेहरे का पर्दा ना करना बस। अब तो ये छोटी सी बात है, अब तो फाशी और यानियत वाले कपड़े पहन के फिरे जा रहे हैं, वो एक फिर अलग अजाब है। बेपर्दगी तो छोटा सा लफ्ज़ है, तब तो बहुत ही गंदे कपड़ों में अक्सर खवातीन चलती फिरती नज़र आती हैं और बड़े फ़खर से अब्बा भाई और शौहर लेके फिर रहे होते हैं अपनी बहन बेटियों और बीवियों को। दयूफ हुए ऐसे मर्द, दयूफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अभी तक किसी मौलवी साहब की बात नहीं की भाई मैंने, जितनी बातें कर रहा हूँ कुरान पाक की आयात हैं और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है मैं दयूफ लोगों के लिए हराम कर दी गई हूँ, दयूफ दयूफ मर्द जन्नत में नहीं जाएंगे दयूफ लोग। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयूफ मर्दों से दयूफ लोगों से क्या मुराद है? फरमाया, वो लोग जो अपनी महरम घर की औरतों के मामले में बेगैरत हो जाएं। ये भाई क्या मतलब? उनको बेपर्दा रखना, गैर शरी तकरीबात में लेके जाना और उनकी इसलाह की फ़िक्र ना करना, उनको कोई एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाना, लड़कों के साथ आवाज़ छोड़ देना और ये परवाह बिल्कुल बेपरवाह हो जाना कि मेरी बहन बेटियां कहां जा रही हैं, किसके साथ आ रही हैं, मेरी मौजूदगी में और मेरी गैर मौजूदगी में कौन मेरे घर में आ रहा है और कौन जा रहा है, ये सारी चीज़ें दयूसियत में आती हैं भाई। और फिर कह दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत को नहीं कहा कि वो जन्नत हराम कर दी गई है, गौर करने का मुकाम है, मर्दों को महरम को कहा जा रहा है कि तुम लोग नहीं जाओगे जन्नत में, दयूस मर्द नहीं जाएंगे। तो भाई ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं घर में आदमी सख्ती शुरू कर दे, को बयान सुन के चला जाए और डंडा लेके जाए और सबको लड़ना शुरू कर दे, ये मकसद नहीं है। मतलब ये है कि पहले किसी चीज़ की अवेयरनेस होती है, इल्म होता है, वो हासिल करें। जब इल्म होगा तो फिर अमली शक्ल उसकी बाद में थोड़ी थोड़ी करके फिर आगे की जाए और उसके बारे में मशवरा किया जाए। पहले तो फ़िक्र और एहसास से आदमी ख़ुद सुधरना चाहे। पहले तो कहते हैं ना, वो बंदूक की जो नाली होती है उसका रुख अपनी तरफ रखें कि सबसे बड़ा मैं मुजरिम हूँ, अपनी इसलाह पहले करवाए, फिर मशवरा करें कि घर में मेरे दीन किस तरह से लेकर आऊँ, मेरे घर में बेदीनी का माहौल है, तो फिर शेख जो बताए उस पर अमल करें, उससे फिर फसाद पैदा नहीं होगा, शर पैदा नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा घर वालों को, प्यार प्यार से सारे लोगों की इसलाह हो जाएगी। लेकिन सख्ती के साथ, अड़ी तड़ी के साथ इम्प्लीमेंट दीन ना करें, उससे फसाद पैदा होगा और हम लोग अल्लाह से वसल करने के बजाय लोगों को उससे बोध का ज़रिया बन जाएंगे अल्लाह से दूर करने का। तो तबलीग भी सीखनी पड़ती है बाज़ मामलात में, ऐसे नहीं है कि सख्ती के साथ सारे मामलात को लेकर चलें। तो ये जो टखनों से ऊपर पैंचे रखें मर्दों के लिए है, और तो कोई मसला बता दिया। और चौथा मले कुल लिल मोमिनीना यगज़ू मिन अबसारिहिम व याफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाज़ निगाहों की हिफाज़त करें और शर्मगाहों की हिफाज़त करें। और आगे अल्लाह पाक ने ख़वातीन को भी हुक्म दिया कि वो भी तमाम नामहरम मर्दों से नज़रों की हिफाज़त करें और अपनी नज़रों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। मर्दों को अलग हुक्म दे रहे हैं और ख़वातीन को अल्लाह पाक अलग हुक्म दे रहे हैं। और हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया, मनकूल है कि ज़िनल आइन नज़र, नज़रबाज़ी आँखों का ज़िना है। और एक हदीस शरीफ में आपने फरमाया, या तो तुम लोग नज़रों की हिफाज़त करोगे और शर्मगाहों की हिफाज़त करोगे, नहीं तो तुम लोगों की शक्लों को मस्त कर दिया जाएगा। तीसरी हदीस शरीफ, नाल नाज़िरा मंजूर अलैहि, अल्लाह पाक लानत फरमा जो बदनज़री करे और उस पर भी लानत फरमा जो बदनज़री के लिए खुद को पेश करे। और एक और हदीस शरीफ में आपने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में ये तमन्ना और ख्वाहिश हो इरादे के साथ कि लोग मुझे देखें, तो रसूलल्लाह ने फरमाया लानत है उसके ऊपर। बहुत से लोग होते हैं उसमें मर्द औरत का मामला नहीं ले रहा, ये भी एक बड़ी बारीक हदीस शरीफ है, मर्द औरत का नाम नहीं, दोनों आ गए। मर्द कैसे भाई? मिसाल के तौर पे बाज़ लोग सूफी होते हैं या मुत्तकी होते हैं, माशाल्लाह नज़रों की हिफाज़त कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश होती है कि मैं नहीं देखूँ, मैडम आप तो मुझे देख लें, मैं कितना हसीन हूँ आप देखें ना। तो बाज़ लोगों की ऐसी भी कैफियत होती है, जैसे भाई आप सब्ज़ी की दुकान पर, एक मिसाल देता हूँ, अब आप फ्रंट के ऊपर ख़वातीन के आगे खड़े हो गए, आप नज़र बचा रहे हैं मान लिया, लेकिन दिल में चोर छुपा हुआ है, देखो मुझे देख लो, मैं नहीं देख रहा तुम्हें, तुम तो मुझे देख लो। तो भाई थोड़ा सा तिरछे कर, ऐसी भी पोजीशन आप रख सकते हैं कि वो आपको नहीं देख पाए, आप थोड़े से क्रॉस खड़े हो जाएं, सब्जी लें और आ जाएं। तो ये दिल में तमन्ना भी नहीं रखनी। हाँ, फिर भी अगर कोई देख रहा है तो मर्द के लिए पर्दा नहीं है, औरत के लिए पर्दा है, वो गुनाहगार होगी। लेकिन अपनी ख्वाहिशें नहीं रखनी चाहिए मर्दों को भी कि मुझे ख्वातीन देखें। कभी इस तरह का मामला हो तो जहाँ तक इख्तियार में हो, अपने नशिस्त, अपनी बैठक या अपने खड़े होने का अंदाज ऐसे क्रॉस कर लें कि उन पे नज़र ना पड़े। तो लानत की बद्दुआ है, लोग समझ ही रहे कि इतना ख़ास मामला नज़रों की हिफाज़त का। अल्लाह पाक ने कुरान में जो हुक्म दिया है कि जो नज़रों की हिफाज़त को जो भी आयत पड़ी गई है, तो आगे अल्लाह वजह भी बता रहे हैं, ये मैं हुक्म इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा तज़किया नफ्स तुम्हें हासिल हो जाए। बताइए, लोग कहते ना तस्की नफ्स कैसे होगा, बातनी तौर पे मैं कैसे पाक होऊंगा, मुजल्ला मुसफ़ा कल मेरा कैसे होगा, नज़रों की हिफाजत से अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारा तस्किया हो जाएगा। और जिसका तस्किया हो जाता है यानी अंदर से पाक हो जाता है वो वलीउल्लाह हो जाता है। हर अमल की हर हुकुम की अल्लाह ने वजह नहीं बताई, लेकिन अल्लाह इसमें हुकुम की वजह बता रहे हैं कि नज़रों की हिफाजत का हुकुम तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारा तस्किया नफ्स तुमको हासिल हो जाएगा। और आखिरी जो अमल है भाई, वो दिल को पाक साफ रखें गैरुल्लाह से, गंदे ख्यालात से, गंदी चीज़ों से। तो अगर कोई गंदे दिल में ख्याल पकाता रहेगा तो ये चार अमाल की जो अनवारात होंगे सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो शैतान जो वसवसे डालता रहता है वो अलग मामला है, उससे बचे आदमी वजू कर ले, कोई किताब पढ़ ले, पोजिशन चेंज कर ले, घर से बाहर चला जाए, बातचीत शुरू कर दे, तो ख्यालात की रोशनी पर निकल आएगा जो शैतानी ख्यालात आते हैं। लेकिन जानबूझ के दिल में लाना जमाना गंदे ख्यालात को और उसमें बिल्कुल मशगूल हो जाना ये जायज़ नहीं, सही नहीं है, इससे दिल बर्बाद हो जाता है। तो दिल हमारा जो है असल में ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। तो दिल के अंदर अल्लाह के अनवरात और अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है। दिल को पाक साफ रखें अल्लाह के लिए, गंदे ख्यालात ना पकाएं। दिल पाक होगा तो इसमें अल्लाह के अनवरात दाखिल होंगे। हदीस शरीफ भी सुन लीजिए दलील के तौर पर। एक हदीस शरीफ का खुलासा मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने बात हमें कहलवाई है, अगर मुझे तलाश करना हो मैं तुम्हें कहाँ मिलूँगा, तो बंदा है मोमिन के टूटे हुए दिल के करीब देखना, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। अल्लाह पाक ने बात कहलवाई। कौन सा बंदा है मोमिन का टूटा हुआ दिल, गुनाह से बचने में जब दिल टूटता है वो गम मिलता है, तो फिर उसमें अल्लाह पाक उस घर को, उस दिल को, टूटे हुए दिल को अल्लाह पाक अपना बसेरा करने की जगह बनाते हैं, यानी उस कल्ब को अल्लाह पाक अपने क़ुर्ब के लिए कबूल फरमाते हैं। तो अल्लाह की बहुत पाक ज़ात है, तो गंदे नापाक दिल में अल्लाह नहीं आते। दिल को पाक साफ रखें और इन पांचों माल की तौफीक किसी भी अल्लाह वाले से जहाँ मुनासबत हो वहाँ ताल्लुक़ क़ायम कर लें, तो थोड़े अरसे में इंशाल्लाह इन पाँचों माल की तौफीक हासिल होगी। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رب كريم يا رحمن الرحيم يا الله جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہنے سننے میں وہ غلطی کمی بیشی ہوئی تو شان رحمت سے بخش دے، معاف فرما دے یا اللہ، ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کے نہیں ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ، سب سے پہلے بولنے والے کو اور ہم سب سننے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو طہارت قلبی للہیت خشیت عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما، حرام عرضوں کا خون کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرما، جس فرما جس فرما لے جس فرما لے یا اللہ، ہمارا ایسا ایمان و یقین عطا فرما کہ ہم اپنا دل توڑ دیں، گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لیں، لیکن اللہ آپ کی محبت میں آپ کے حکم کو ٹوٹنے سے ہم بچا لیں اللہ، اپنا ایسا تعلق معلّہ ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ، حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی آئے محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے یا اللہ، تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں لال سے غنی فرما، کل مومنین مومنات کو بخش دے معاف فرما دے، ایک صاحب ہیں پریشان ہیں کوئی ان پر ایک مصیبت بلا آ گئی ہے، دعا کریں اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ان کو مصیبت اور اس بلا سے ان کو نجات دے دے اللہ، اور دشمنوں کی شر سے حافظین کی شر سے ان کی حفاظت فرمائے یا رب کریم یا رحم الرحیم یا اللہ، فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یہودیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے باغ نہیں آئیں گے تو اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ، میرے والد صاحب کی اور میرے پیارے محبر ہمارے پیارے مرشدین کی اور ہمارے جملہ محرومین کی، کل مومنین مومنات کی، کل جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ، حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ، کوئی جو بھی جس کی جو خواہش اور جو دعا ہو اللہ تو جاننے والا ہے اللہ، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے اللہ، جس فرما لے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما لے اللہ، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، کچھ خواتین کی رسولیاں دعا کریں اللہ ان کی رسولیوں کو ختم فرما دے، اور خاتون ہیں ان کے جادو بد اثرات بہت شدید ہیں، گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں اور دوسرے امراض ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کو تمام جسمانی و روحانی امراض سے، جادو بد اثرات سے نجات دے دے اللہ، مست نام و نشان بٹا دے یا اللہ، ان کو تندرستی عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، عافیت 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 عطا فرما دے، اپنے یا رحم الرحمین کے صدقے میں یا رحم الرحمین کو شفا دے دے، عافیت عطا فرما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم